శలాకయా చక్షురున్ మిళితం యేన తస్మై శ్రీ గురువే నమః. శ్రీ చైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూప కదామయిహం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీ గురు శ్రీయుత పదకమలం శ్రీ గురున్ వైష్ణవాంశ్చ శ్రీ రూపం సాగజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం. శ్రీ రాధా కృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలితా శ్రీ విశాఖాన్వితంశ్చ. నమో విష్ణు పాదాయ కృష్ణ ప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామీనితి నామిని. నమస్తే సారస్వతి దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణి. నమో మహావదన్యాయ కృష్ణ ప్రేమ ప్రదాయతే కృష్ణాయ కృష్ణ చైతన్య నామ్నే వర్తు శైలం. శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శివాసరి గౌర భక్తుబృంద హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ హరే రామ రామ రామ. లాస్ట్ వీక్ హమ్నే 16 వర్స్ తక్ కియా థా, ఉస్మే వ్యాస్ దేవ్ నే కలియుగ్ జో ఆనే వాలా యుగ్ హై చక్ర కలియుగ్, ఉస్కో వ్యాస్ దేవ్ నే అప్నే దివ్య దృష్టి సే దేఖా, ఉసీ కా డిస్క్రిప్షన్ 17 or 18 చాప్టర్ 17 or 18 శ్లోక్ మే భీ ఆ రహా హై డీటెయిల్ మే. తో యే శ్లోక్ ఇస్ ప్రకార్ సే హై, భౌతికానాం చ భావానాం సత్విహాసం చ తత్కృతం అశ్రద్ధధానాన్నిసత్వాద్ దుర్మేధాన్ హసితాయుసః దుర్భగాశ్చ జనాన్ వీక్ష్య మునిర్దివ్యేన చక్షుషా సర్వావరణాశ్రమాణాం యత్ దద్ధౌ తద్ధ్యౌ హితం అమోఘదృక్. బహుత్ అచ్చా వర్క్స్. భౌతికానాం చ భావానాం, ఇన్హోనే వస్తువుం కా భీ ఔర్ కర్మ కా భీ, ఔర్ కలియుగ్ మే వస్తువుం మే భీ ఔర్ క్రియాఓం మే భీ శక్తి హాసం చ తత్కృతం. తో ఇన్హోనే దేఖా కి కిస్ ప్రకార్ సే కలియుగ్ ఆనే సే శక్తి కా హ్రాస్ మతలబ్ శక్తి కా క్షయ హోతా హై, ఔర్ కలియుగ్ కే ద్వారా యే ప్రభావ్ సే హోతా హై. అశ్రద్ధ ధానాన్, లోగో కే అందర్ శ్రద్ధా కా వినాశ హో జాతా హై, శ్రద్ధా కమ్ హో జాతీ హై. నిస్సత్వాన్, నిస్సత్వాన్ మతలబ్ సత్వ గుణ కా కమ్ హో జాతా హై, లోగ్ రజోగుణ తమోగుణ మే జ్యాదా చలే జాతే హై. ఔర్ హ్రసిత్ ఆయుసః, హ్రసిత్ ఆయుసః కా మతలబ్ లోగో కీ ఆయు భీ హ్రాస్ హో జాతీ, ఆయు కా క్షయ హో జాతా హై. కలియుగ్ మే లోగ్ జ్యాదా దిన నహీ జీతే హై. इसके बाद दुर्मेधान, दुर्मेधान मतलब उनकी बुद्धि भी मेधा, मेधा शक्ति मतलब बुद्धि शक्ति, दुर्मेधान मतलब उनकी बुद्धि शक्ति क्षीण हो जाती है. और आयु से मतलब आयु कम हो जाती है. दुर्भगान, दुर्भगान का मतलब होता है उनका भाग्य भी खराब हो जाता है, अनफॉर्चुनेट हो जाते हैं. जनान वीक्ष्य, जनान मतलब लोग, वीक्ष्य मतलब वेद व्यास मुनि ने उनको देखा, वीक्ष का मतलब देखा. मुनि दिव्य ने चक्षुषा, अपने दिव्य चक्षुओं से व्यास देव ने कलयुग के लोगों के ये लक्षण देखे. सर्ववर्णाश्रमाणाम सा यद यद यद्यौ हितम अमोघवद्. तो व्यास देव ने 5000 साल पहले अपने दिव्य चक्षुओं से, दिव्य दृष्टि के प्रभाव से ये देखा कि कलयुग के लोगों में, वस्तुओं में भी और लोगों की क्रियाओं में भी, लोगों के भाव में भी शक्ति की कमी हो जाएगी, लोगों के अंदर श्रद्धा कम हो जाएगी, सत्व गुण कम हो जाएगा. निस्सत्वात् मतलब सत्व गुण पाया नहीं जाएगा, बहुत कम लोगों में सत्व गुण पाया जाएगा. और दुर्मेधान, बुद्धि उनकी कुटिल हो जाएगी, कुटिल बुद्धि हो जाएगी. हसित आयु सह, आयु बहुत कम हो जाएगी. दुर्भगान मतलब भाग्य बहुत कम हो, भाग्य खराब हो जाएगा, अनफॉर्चुनेट अभागे लोग बन जाएंगे. ये सब मुनि ने देखा और साथ में ये भी देखा कि सर्वा सर्ववर्णाश्रमाणाम च यद्यद्यो हितमोग्रक. इसका मीनिंग है कि जो व्यास देव हैं वो सारे वर्ण के लोगों को जब उन्होंने इस प्रकार से देखा तो वो विचार करने लगे कि किस प्रकार से इन सब लोगों का भला होगा. व्यास देव चूंकि स्वयं भगवान के इनकार्नेशन है, इसलिए जब उन्होंने देखा कि इतनी खराब अवस्था होगी कलयुग में, तो वो चिंतित हो गए कि लोगों इस प्रकार के लोगों का कैसे भला करेंगे जिनके अंदर कोई अच्छे गुण पाए नहीं जाते. जैसे अनुवाद लिखा है, परम ज्ञानी ऋषि अपनी दिव्य दृष्टि से युग के प्रभाव से प्रत्येक भौतिक वस्तु की औन्नति को देख सकते थे। वे यह भी देख सकते थे कि श्रद्धा विहीन व्यक्तियों की आयु क्षीण होगी और सत्वगुण के अभाव के कारण अधीर रहेंगे। इस प्रकार उन्होंने समस्त वर्णों तथा आश्रमों के लोगों के कल्याण पर विचार किया। तो जब उन्होंने देखा कलयुग में इस प्रकार के लोग हैं, तो उन्होंने विचार किया कि इन लोगों का कैसे भला हो। तो भगवान के भक्त और भगवान के अवतार जो हैं, वो हमेशा करुणा के कारण लोगों का भला करना चाहते हैं। तो वो विचार करने लगे कलयुग में लोगों का कैसे भला करेंगे। इसका तात्पर्य में आता है कि समय की शक्ति इतनी प्रबल है, इतनी प्रबल होती है कि सारे पदार्थ को समय आने पर विस्मृति के गर्भ में डाल देती है। काल शक्ति इस संसार में सबसे शक्तिशाली है। समय आने पर काल शक्ति हर वस्तु को विस्मृति के गर्भ में डाल देती है, मतलब व्यक्ति हर चीज भूल जाता है। चतुर्युग चक्र के अंतिम युग कलयुग में समय के प्रभाव से सारी भौतिक वस्तुओं की शक्ति का क्षय हो जाता है। इस युग में जन सामान्य की आयु काफी घट जाती है, उसी प्रकार से स्मरण शक्ति भी घट जाती है। लोग नॉर्मली कलयुग में 100 साल कलयुग का समय होता है, परंतु आज फिर लोग कलयुग में 100 साल भी नहीं जीते हैं। धीरे धीरे अभी हम देखते हैं 100 साल जिसकी उम्र बढ़ जाती है, 100 साल तक जो जी लेता है उसको हम सोचते हैं कि उसने बहुत सारा जीवन जी लिया। ज्यादातर लोग 60, 70, 75 इसकी एज के आगे नहीं जा पाते। तो ये अंतिम युग कलयुग है जिसमें समय के प्रभाव से सब वस्तुओं की शक्ति कम हो जाती है, आयु कम हो जाती है, स्मरण शक्ति भी कम हो जाती है, और उनकी क्रियाएं जो हैं वो भी उतनी ज्यादा एलिवेटेड, उतनी उन्नति नहीं रह पाती है। धरती में भी उतना अन्न पैदा नहीं होता है जितना पहले के समय में होता था। गाय में भी पहले के समय में जितना दूध देती थी उतनी दूध नहीं देती है। सब्जियों और फलों का उत्पादन भी पहले से कम हो जाता है। इस प्रकार से सभी लोग, चाहे मनुष्य हो, जीव हो, पशु हो, पौष्टिक भोजन प्राप्त नहीं कर पाते। जीवन के अनेक अनेक आवश्यकताओं की चाहत के कारण स्वाभाविक रूप से आयु घट जाती है, स्मरण शक्ति कम हो जाती है, बुद्धि अल्प हो जाती है और पारस्परिक व्यवहार में दिखावा आ जाता है। महर्षि व्यासदेव अपनी दिव्य दृष्टि से इसे देख सके, जिस प्रकार कोई ज्योतिषी मनुष्य के भाग्य को देख सकता है, या ज्योतिर्विद चंद्र तथा सूर्य ग्रहणों की भविष्यवाणी कर सकता है, उसी प्रकार शास्त्रों के भीतर झांक सकने वाले मुक्तात्मा सारी मानवता का भविष्य पहले से बता सकते हैं। वे अपनी आध्यात्मिक पैनी दृष्टि से यह सब देख सकते हैं। वास्तविकता में जो व्यक्ति जितना ज्यादा शास्त्रज्ञ होता है, शास्त्रों को जानने वाला होता है, वो व्यक्ति बहुत दूर दृष्टि रखता है। उसको पता चलता है आगे क्या होने वाला है, 100 साल बाद क्या होगा। तो व्यासदेव चूंकि स्वयं भगवान के अवतार हैं और बहुत बड़े आचार्य हैं, इसलिए उनको पता चल गया कि कलयुग में क्या होने वाला है। तो कलयुग में हम लोग जो सोचते हैं कि हम बहुत एडवांस हैं, वास्तविकता में शास्त्र के आधार पर हम सबसे थर्ड क्लास व्यक्ति हैं। सत्ययुग में सबसे अच्छे लोग होते हैं, उसके बाद द्वापर, उसके बाद त्रेता, और कलयुग में जो तीनों युगों के रिजेक्टेड लोग जो रहते हैं वो आते हैं। जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में ऐसा होता है ना, एक सबसे पहले वो चीज जाती है कोई बड़ी कंपनी में, फिर वहां से रिजेक्ट होता है, उसके बाद रिजेक्ट होके सेल में जाता है। तो इस तरह से कलयुग में जो जीव आए हैं वो तीनों युगों से रिजेक्ट होके आए हैं, और दुर्भाग्य के कारण हम सोचते हैं कि हम सबसे एडवांस हैं। हमारा दिमाग इतना कमजोर है कि हमें पेपर की जरूरत पड़ती है। सत्ययुग द्वापर युग में इतने पेपर की जरूरत नहीं पड़ती थी, लोगों के दिमाग में सब सब कुछ रहता है, और हम अपने मोबाइल में रिमाइंडर लगाते हैं, नोटबुक, नोटपैड मोबाइल में रखते हैं, नोटबुक अपने साथ रखते हैं कि कुछ भूल नहीं जाए। ये कोई एडवांसमेंट कलेक्शन नहीं है, ये डिग्रेडेशन कलेक्शन। केवल लोगों को घमंड में लगता है कि हाँ हम एडवांस हो गए, वास्तविकता में कलयुग के लोग सबसे ज्यादा गिरे हुए लोग हैं, जीवन की दृष्टि से भी, व्यवहार की दृष्टि से भी। तो ये इनको पता चला, वेद व्यास जी को। इस प्रकार से ऐसे सारे अध्यात्मवादी जो स्वाभाविक रूप से भगवत भक्त हैं, जन सामान्य का कल्याण के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं। जनता के वास्तविक मित्र वे हैं, तथा कथित जन नेता नहीं, जो यह भी नहीं जानते कि अगले 5 मिनटों में क्या होने वाला है। इस युग में जनता तथा उनके तथा कथित नेता सभी अभागे हैं, अभागे व्यक्ति हैं जिनकी अध्यात्म में कोई श्रद्धा नहीं होती। वे कलयुग द्वारा प्रभावित होते रहते हैं, वे नाना रोगों से व्याकुल होते रहते हैं। उदाहरणार्थ आधुनिक युग में क्षय के रोगी हैं, और क्षय रोग के अस्पताल भी अनेक हैं, लेकिन पूर्व काल में ऐसा नहीं था क्योंकि समय इतना प्रतिकूल नहीं था। इस युग के अभागे लोग उन योगियों का स्वागत करते हुए कतराते हैं जो व्यासदेव के प्रतिनिधि तथा निस्वार्थ कार्य करता है, जो कुछ ना कुछ योजना बनाने में लगे रहते हैं जिससे सभी वर्णों तथा आश्रमों के लोगों का लाभ हो सके। सबसे बड़े मानवतावादी तो वे योगी हैं जो व्यास, नारद, मध्व, चैतन्य, रूप, सरस्वती आदि के संदेश का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे सब एक ही हैं, भले ही व्यक्ति भिन्न भिन्न हो लेकिन उनका उद्देश्य एक ही है, पतित आत्माओं को भगवत धाम वापस भेजकर उनका उद्धार करना। तो व्यासदेव और उनके प्रतिनिधि जो हैं, चाहे वो नारद मुनि हो, मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य, चैतन्य महाप्रभु, रूप गोस्वामी, भक्ति सिद्धांत सरस्वती, श्रील प्रभुपाद, सभी मैसेज सबका एक ही है, सबका उद्देश्य भी एक है, जीवों को भगवत धाम भेजना। केवल व्यक्ति अलग अलग है, बाकी उनका मैसेज संदेश केवल एक ही। तो अभी नेक्स्ट श्लोक से हम देखेंगे कि व्यासदेव ने क्या किया। कलयुग के लोगों को जब इस प्रकार से देखा तो उन्होंने क्या किया। चातुर्होत्रम कर्म शुद्धम प्रजानाम वीक्ष्य वैदिकम व्यदधात यज्ञ संतत्यै वेदमेकं चतुर्विधम्। He saw that the sacrifices mentioned in the Vedas were means by which the people's occupations could be purified. उन्होंने देखा कि वेदों में वर्णित यज्ञ वे साधन हैं जिनसे लोगों की वृत्तियों को शुद्ध बनाया जा सकता है। अतः इस विधि को सरल बनाने के लिए ही उन्होंने एक वेद के चार भाग कर दिए जिससे वे लोगों के बीच फैल सके। सबसे पहले कलयुग के पहले केवल एक ही वेद था, यजुर्वेद नाम से, और उस यजुर्वेद में ही चार विभाग थे। और कलयुग आने पे ही उस वेदों को फिर डिवाइड किया गया, अलग अलग पुस्तकों के रूप में डिवाइड किया गया। पहले केवल यजुर्वेद था, उसके बाद ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये चार वेद हुए। तो यजुर्वेद को इसलिए ओरिजिनल वेद बोला जाता है क्योंकि सबसे पहले ओरिजिनल वेद वही है, उसमें से चार डिवाइड वेद व्यास ने किया, एक वेद के चार भाग बना के उसको अलग अलग लोगों को सिखाया जिससे लोगों को आसानी से सिखाया जा सके। और वेद व्यास ने यह भी बताया कि वेदों में जो यज्ञ करने का तरीका है, यज्ञ करने के तरीके से लोग शुद्ध हो सकते हैं क्योंकि यह यज्ञ वो भगवान के लिए करेंगे, भगवान के लिए यज्ञ करके लोग शुद्ध हो सकते हैं। और चार वेदों को भाग, एक वेद को चार विभागों में बांटा गया जिससे कि चारों आश्रमों का धर्म शुद्ध हो सके। और चार वेद बनाने के बाद फिर वेद व्यास ने पुराणों को भी लिखा, महाभारत, संहिता, इनको भी लिखा जो कि पंचम वेद कहलाती है। पुराण, संहिता, महाभारत, रामायण, इनको पंचम वेद बोला जाता है, पांचवा वेद। और ये सब उन्होंने केवल इसीलिए किया जिससे कि कलयुग के लोगों को बेनिफिट मिल सके। और फिर हिस्ट्रीज को तैयार किया गया, रामायण और महाभारत जो हिस्ट्री में आते हैं। एक्चुअली इतिहास और पुराण ये दो वस्तुओं में थोड़ा अंतर है। जैसे रामायण महाभारत जो है वो इतिहास में आते हैं और श्रीमद् भागवतम जो है वो पुराण में आती है। तो इतिहास का मतलब है कि इतिहास में आपको क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस मिलते हैं कि एक घटना के बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, लगातार क्रोनोलॉजी में दिया जाता है। जैसे रामायण, भगवान राम की लीलाएं सारी क्रोनोलॉजिकल है। महाभारत में पांडवों के जो घटनाक्रम है वो क्रोनोलॉजिकल, समय के साथ समयबद्ध तरीके से दिया है। तो इतिहास इस प्रकार से होता है जिसमें समयबद्ध तरीके से वस्तुओं को बताया जाता है, जबकि पुराण में इस तरह से होते हैं कि पुराण में पूरे ब्रह्मांड में अलग अलग समय की महत्वपूर्ण लीलाओं को संकलित किया जाता है, कंपाइल किया जाता है। उसमें ये जरूरी नहीं है कि कौन सी लीला पहले हुई, कौन सी बाद में हुई, अलग अलग कल्प की भी लीलाएं हो सकती हैं। तो पुराण का मतलब ओल्ड, पुराना, पुराण का मतलब पुराना होता है। तो यही मेन अंतर है हिस्ट्री और पुराण में। हिस्ट्री जो है वो सीक्वेंशियल होती है जबकि पुराण केवल डिस्क्रिप्शन होते हैं अलग अलग लीलाओं के, अलग अलग महत्वपूर्ण घटनाओं के। क्योंकि ब्रह्मांड की सारी घटनाओं को अगर लिखने के लिए जाएंगे तो लिखा नहीं जा सकता, इतनी सारी घटनाएं हो चुकी हैं ब्रह्मांड में, इसलिए उसमें से जो जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं वो पुराणों में डिस्क्राइब की जाती है। संबद्ध ऐतिहासिक तथ्यों से पुराण तथा महाभारत तैयार किए गए जिनमें चारों वेदों की शिक्षा दी गई है। पुराणों तथा महाभारत को वेदों का अभिन्न अंग मानने में कोई शंका नहीं होनी चाहिए। छंदोग्य उपनिषद में पुराणों तथा महाभारत को, जिन्हें सामान्य रूप से इतिहास माना जाता है, पंचम वेद कहा गया है। छांदोग्य के उपनिषद में पुराणों का डिस्क्रिप्शन है, उसमें बताया गया है कि ये पुराण जो है, पुराण और महाभारत, ये पांचवें वेद है, पंचम वेद के समान इनको बोला गया है। श्रील जीव गोस्वामी के मत अनुसार शास्त्रों की अपनी अपनी महत्ता आंकने की यही विधि होती है। जीव गोस्वामी ने 500 साल पहले बताया है इस प्रकार से, पुराण जो है, कई बार कलयुग में पुराणों के जो डिस्क्रिप्शन है उसको वेदों के भी ज्यादा, वेदों के भी ऊपर प्रायोरिटी दी जाती है। जीव गोस्वामी ने कुछ कुछ जगह पे इस प्रकार से भी लिखा है, क्योंकि पुराण जो है वो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल प्रदर्शित करते हैं। वेदों में व्यक्ति को कॉन्सेप्ट पता चलता है और पुराण उसको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझाते हैं। और चूंकि कलयुग में लोगों को प्रैक्टिकल एग्जाम्पल की जरूरत पड़ती है, इसलिए कई बार पुराण के जो कथन है उनको बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसलिए जो भी व्यक्ति पुराणों को रिजेक्ट करते हैं वो प्रामाणिक नहीं होते हैं। जैसे भारत में कुछ कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जो बोलती हैं पुराणों को हम नहीं मानेंगे, तो वो बोगस संस्थाएं हैं, क्योंकि श्रीमद् भागवत ये बता रहे कि व्यासदेव ने ही सब कुछ लिखा, वेद और पुराण। तो वेदों को मानना और पुराणों को नहीं मानना, ये अपने आप में एक बोगस चीज है। तो इस प्रकार से ये हिस्ट्री में आ रहा है। इसके बाद आता है यजु सामर्थवा आख्या, यजु सामर्थवाख्या वेदाश्चत्वार उद्धृता इतिहास पुराणम चा पंचमो वेद उच्यते। भागवत में भी यही लिखा है, मूल ज्ञान के स्त्रोत्रों वेदों के चार पृथक विभाग किए गए और पुराणों में वर्णित ऐतिहासिक तथ्य तथा प्रामाणिक कथाएं पंचम वेद कहलाती। तो एक यजुर्वेद था, उस यजुर्वेद को चार भागों में डिवाइड किया गया और उसके बाद पुराण इतिहास लिखे गए, और पुराण इतिहास में जो कथाएं हैं उसको पांचवें वेद की संज्ञा दी गई, पंचम वेद। इसके बाद फिर वेद व्यास ने क्या किया, एक एक वेद, एक एक पुराण अलग अलग ऋषियों को, अपने अपने अलग अलग शिष्यों को उन्होंने दे दिया पढ़ने के लिए, सीखने के लिए। तत्र वेद धर पहिला सामगो जैमिनी कवि वै संपायन ए वै को निष्णातो यजुसामुत। ये उनके शिष्य हैं अलग अलग, उनको अलग अलग वेद का आचार्य बनाया, उनको अलग अलग वेद सिखाया। जैसे पैल पैल ऋषि जो है वो ऋग्वेद के आचार्य बने, जैमिनी सामवेद के आचार्य बने, यजुर्वेद के आचार्य वैशंपायन ऋषि बने। इस प्रकार से उन्होंने अपने 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 एक एक शिष्य को वेदों की अलग अलग शाखाएं प्रदान की, पैल ऋषि, जैमिनी ऋषि और वैशंपायन ऋषि। इसके बाद अलग अलग पुराणों को भी लोगों को दिया गया। अथर्वांगिरसात् मासित सुमंतुर दारुणो मुनि इतिहास पुराणा नाम पिता मे रोम हर्षण। और सुमंतु मुनि जो है, अंगिरा, अंगिरा ऋषि, उनको सुमंतु मुनि भी बोलते हैं, उनको अथर्ववेद दिया गया। और माई फादर, माई फादर मतलब सुत गोस्वामी के पिता, सुत गोस्वामी के पिता मतलब रोमहर्षण सुत, रोमहर्षण सुत को पुराण और इतिहास का जिम्मेदारी दिया गया। तो अभी हमने देखा किस प्रकार से उन्होंने वेदों को डिवाइड किया, अपने शिष्यों को बांट दिया, अंगिरा, पायल ऋषि, वैशंपायन ऋषि और रोमहर्षण, इन सभी को, वेद और पुराणों को उन्होंने विभाजित करके इनको दे दिया। श्रुति मंत्रों में इस प्रकार से बताया गया है कि अथर्ववेद के दृढ़ नियमों का कठाई कड़ाई से पालन करने वाले अंगिरा मुनि अथर्ववेद के अनुयायियों में अग्रणी थे, अथर्ववेद का इंचार्ज उनको बनाया गया। एत विषयो वेदम स्वम स्वम यस्यन्ननेकधा शिष्यै प्रशिष्यै तस्यस्यै वेदास्ते साखिनो भवन। इसमें इंपॉर्टेंट है शिष्यै प्रशिष्यै तत्शिष्यै। इसका मीनिंग है स ए ते त एव विषयो वेदम। ये जितने ऋषि थे इनको जो जो वेद दिया गया, जो भी वस्तु दी गई उसको उन्होंने स्वयं बहुत अच्छे से सीखा, उसके बाद अपने शिष्यों को प्रदान किया। शिष्य मतलब उन्होंने अपने शिष्यों को प्रदान किया, प्रशिष्य उनके शिष्यों ने अपने शिष्यों को प्रदान किया, और तत्शिष्य और उन लोगों ने भी अपने शिष्यों को प्रदान किया। इस प्रकार से वेदों की शाखाएं बनती गई, तीनों चारों वेदों में से अलग अलग गुरु शिष्य संप्रदाय संप्रदाय निकल के आए वेदों की शाखाओं के रूप में। ज्ञान के मूल स्रोत तो वेद है, संसारी या दिव्य ज्ञान की कोई ऐसी शाखा नहीं है जो वेदों के मूल भाष्य से संबंध ना हो। उन्हें केवल विभिन्न शाखाओं के रूप में विकसित कर लिया गया। मूलतः वे महान सम्माननीय तथा विद्वान आचार्यों द्वारा बनाई गई, दूसरे शब्दों में वैदिक ज्ञान विभिन्न शिष्य परंपराओं द्वारा भिन्न भिन्न शाखाओं में विभाजित होकर सारे विश्व में वितरित किया गया। अतः वेदों के परे स्वतंत्र ज्ञान का दावा कोई नहीं कर सकता। इस प्रकार से पूरे विश्व में वेदों का प्रचार इन्होंने किया। इसके बाद आता है नेक्स्ट 24, तएव वेदा दुर्मैर्भायन्ते पुरुष पुरुषैर्यथा एवं चकार भगवान व्यास कृपण वत्सल। इस प्रकार जब व्यास देव ने व्यास को एक नाम दिया गया यहाँ पे, कृपण वत्सल। कृपण का मतलब होता है, भगवत गीता में दूसरे अध्याय में सातवें श्लोक में कृपण का मीनिंग आता है कि वन हु लीड हिज लाइफ लाइक कैट्स एंड डॉग्स एंड लीव्स दिस वर्ल्ड विदाउट केयरिंग फॉर सेल्फ रियलाइजेशन। जो इस शरीर में पशुओं के समान जीवन व्यतीत करते हैं, आत्म साक्षात्कार के बारे में नहीं सोचते हैं और फिर मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, इस प्रकार के लोगों को कृपण बोला जाता है। और कृपण वत्सल मतलब वेद व्यास जो है वो इस प्रकार के लोगों के लिए बहुत कृपालु हैं, उनके ऊपर बहुत प्रेम करते हैं। तो इस प्रकार से अज्ञानी जन समूह पर अत्यंत कृपालु ऋषि व्यास देव ने वेदों का संकलन किया जिससे कम ज्ञानी पुरुष भी उनको आत्मसात कर सके। तो इस प्रकार से चूंकि एक वेद बहुत बड़ा था, उसको समझना बहुत कठिन था, इसलिए वेद व्यास ने इनको संकलित करके डिवाइड किया जिससे कि कलयुग के जो कम ज्ञानी लोग हैं वो भी उसको समझ सकें, उसको आत्मसात कर सकें। कलयुग के ज्ञानियों का लक्षण हमने देखा था आज के सेशन के पहले भाग में, किस प्रकार से कलयुग के लोगों की आयु कम होती है और मंद बहुत आलसी होते हैं, सुमंद मतयो बुद्धि बहुत कमजोर होती है, मंद भाग्य भाग्य बहुत कम होता है, उपद्रवता हमेशा परेशान रहते हैं। ये कलयुग के लोगों के लक्षण है, कलयुग के जो प्रोडक्ट है उसके ये लक्षण है। तो ऐसे लोगों को जब वेद व्यास ने देखा तो उन्होंने उनको ज्ञान देने के लिए इस प्रकार से वेदों का संकलन प्रारंभ किया। तात्पर्य, वेद एक है, यहाँ पर अनेक शाखाओं में इसके विभाजन के कारणों की व्याख्या की गई है। समस्त ज्ञान का बीज वेद ऐसा विषय नहीं है जिसे कोई सामान्य व्यक्ति आसानी से समझ सके। ऐसा प्रतिबंध है कि जो सुपात्र ब्राह्मण नहीं है उसे वेद नहीं सीखना चाहिए। इस प्रतिबंध की कई प्रकार से गलत व्याख्याएं की गई हैं। मनुष्यों का एक वर्ग ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के कारण ही ब्राह्मण योग्यता का दावा करता है। वह वेदों के अध्ययन को ब्राह्मण जाति का एक आधिपत्य मानता है। लोगों का दूसरा वर्ग इसे उन जाति वालों पर अन्याय बताता है जो ब्राह्मण कुल में जन्म नहीं ले पाते, लेकिन ये दोनों ही दिग्भ्रमित हैं। वेदों का विषय एक ऐसा है जिसकी व्याख्या स्वयं भगवान ने ब्रह्मा के लिए की थी। अतएव विलक्षण सतोगुणी व्यक्ति ही इस विषय को समझ सकते हैं। रजोगुणी तथा तमोगुणी लोग वेद विषय को नहीं समझ पाते। वैदिक ज्ञान का चरम उद्देश्य भगवान श्री कृष्ण है। जो लोग रजो तथा तमोगुणी हैं वे भगवान को बहुत कम समझ पाते हैं। सत्य युग में प्रत्येक व्यक्ति सतोगुणी होता था, धीरे धीरे त्रेता तथा द्वापर युग में सतोगुण का ह्रास होता गया और जनता भ्रष्ट होती गई। आधुनिक युग में सतोगुण प्रायः शून्य है। अतएव जनता के हित के लिए परम दयालु संपन्न ऋषि श्री व्यास देव ने वेदों को अनेक प्रकार से विभक्त कर दिया जिससे वे रजोगुण तथा तमोगुण वाले अल्पज्ञों द्वारा भी समझे जा सके। इसकी व्याख्या अगले श्लोक में की गई है। ये तात्पर्य को शुरू से एक बार करेंगे, थोड़ा ऊपर करके। ये बहुत महत्वपूर्ण तात्पर्य है। इसमें है कि वेद जो है एक ही वेद है, क्योंकि वेद का मतलब ज्ञान। उसको उस वेद को अलग अलग शाखाओं में विभाजित करने का कारण है, सबसे पहला तो यह है कि विभाजित करके अलग अलग हेडिंग के अंदर डिवाइड करके, क्योंकि वेद अगर बहुत सारे होंगे, इतने इतने सारी क्वांटिटी में होंगे तो सामान्य लोग नहीं समझ पाएंगे, इसलिए उनको डिवाइड करके अलग अलग हेडिंग के द्वारा उनको नाम रखा गया जिससे कि सामान्य व्यक्ति उसको समझ सके। और दूसरा, वेदों में जो लेवल ऑफ नॉलेज है, ज्ञान का जो स्तर है, वो बहुत सारे लोग नहीं समझ सकते, इसलिए वेदों को प्रतिबंधित किया गया था ब्राह्मणों के पढ़ने के लिए। अभी ब्राह्मण का ये मीनिंग नहीं है कि जो ब्राह्मण कुल में जन्म लिया वो ही केवल वेदों को पढ़ सकता है। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, कुछ लोग केवल ये बोलते हैं कि हमारा ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ इसलिए हम वेदों को पढ़ेंगे, और कुछ लोग बोलते हैं कि ये हमारे ऊपर अन्याय है कि हमारा ब्राह्मण कुल में जन्म नहीं हुआ। वास्तविकता में दोनों को नहीं पता है क्या वो शास्त्रों में क्या लिखा गया है। एक केवल अपने जन्म के कारण बोल रहा है कि मैं पढ़ सकता हूँ, जबकि उसके अंदर हो सकता है क्वालिटी नहीं, और दूसरा बोल रहा मेरा जन्म नहीं हुआ इसलिए मैं नहीं पढ़ सकता हूँ। वास्तविकता में ऐसा नहीं है कि किस किस कुल का है, व्यक्ति को ब्राह्मण के लिए क्वालिफाई होना चाहिए। प्रभुपाद जी उदाहरण देते थे कि जैसे लॉयर का बेटा लॉयर नहीं बनता है जब तक वो पास नहीं करे, पायलट का बेटा जन्म के साथ ही पायलट नहीं बनता है, इसी तरह से ब्राह्मण जो है वो जन्म से नहीं होता है, गुण और कर्म से होता है। तो ये दोनों की अवधारणा गलत है कि मैं पढ़ सकता हूँ मैं नहीं पढ़ सकता हूँ। वास्तविकता में जो ब्रह्म को जानता है वो वेदों को पढ़ सकता है, क्योंकि वेद कठिन है, उनको पढ़ने के लिए ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है। और इसमें लिखा भी है कि केवल विलक्षण सत्वगुणी व्यक्ति वेदों को समझ सकते हैं, जो रजोगुण और तमोगुण में है वो वेद को समझ भी नहीं पाते, पढ़ेंगे तब भी नहीं समझ पाते। जैसे रामायण में इस प्रकार से एक लीला आती है, बहुत सारे लोग भगवान राम के ऊपर आरोप लगाते हैं कि भगवान राम ने शंभूक नाम से एक शूद्र का वध कर दिया था, उसको अपनी तलवार से काट दिया था, उसका गला काट दिया था, क्योंकि वो वेदों को पढ़ता था और तपस्या कर रहा था। ये लीला रामायण में आती है क्योंकि भगवान राम के दरबार में एक व्यक्ति आता है और आके बोलता है कि मेरे मेरे सामने मेरे पुत्र की मृत्यु हो गई, तो आपके राज्य में इस प्रकार से पाप नहीं हो सकता, सामान्यतः पुत्र की असमय मृत्यु नहीं होनी चाहिए पिता के रहते हुए, तो ये पाप हुआ है, इसके पीछे कुछ कारण है। भगवान रामचंद्र भक्त पूछते हैं कि ऋषिवर बताइए इसका क्या कारण है, तो बताते हैं आपके राज्य में एक शूद्र है वो वेदों को पढ़ रहा है और तपस्या कर रहा है। तो उन्होंने ये नहीं बोला कि उस शूद्र जन्म से है, वो व्यक्ति हो सकता है उस योनि में जन्म है परंतु तो उसका स्वभाव शूद्र के जैसा था, दैट मीन्स कि उसके सोचने का ढंग इस प्रकार से था कि कैसे लोगों का अहित किया जा सके, कैसे लोगों को अहित किया जाए। और कई बार जब जब कोई टेक्नोलॉजी या कोई बड़ी शक्ति ऐसे व्यक्ति को मिलती है जो क्वालिफाइड नहीं है, जिसके विचार ठीक नहीं है, तो वो उस चीज का दुरुपयोग कर सकता है। तो इसी तरह से जो व्यक्ति प्रॉपरली प्रशिक्षित नहीं है जीवन को जीने के लिए या अच्छे व्यवहार के लिए, वो व्यक्ति अगर वेदों को मिसयूज करता है तो फिर वो सभी के लिए खराब होता है। इसलिए सामान्यतः जब शूद्र बोला जाता है, शूद्र का मतलब होता है अनकल्चर्ड पीपल, जिनका कोई संस्कृति नहीं है, जिनका आचार व्यवहार अच्छा नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति, उस ब्राह्मण ने बोला कि वो व्यक्ति वेदों को पढ़ रहा है उसके कारण पाप है, उसके कारण उस पाप के कारण मेरा बेटा मर गया, तब भगवान रामचंद्र ने जाके उस शूद्र का वध किया। तो लोग भगवान रामचंद्र को बदनाम करते हैं कि उन्होंने इस प्रकार से किया इस प्रकार से किया, परंतु वास्तविकता में समझना चाहिए कि ये डिवीजन किस प्रकार से है। ये केवल जाति प्रथा नहीं है, ये है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जो है उनके साइकोलॉजिकल नेचर, उनके आचार व्यवहार के आधार पे, गुण और कर्मों के आधार पे डिवीजन किया गया है। ओके, नेक्स्ट श्लोक इसके बाद आता है 25 नंबर। स्त्री शूद्र द्विज बंधु नाम त्रयी न श्रुति गोचर कर्म श्रेयसी मूढ़ा नाम श्रेय एवं भवेदिह इति भारतम आख्यानम कृपया मुनिना कृतम। महर्षि ने अनुकंपावश हितकर समझा कि यह मनुष्यों को जीवन का चरम लक्ष्य प्राप्त करने में सहायक होगा, इस प्रकार उन्होंने स्त्री शूद्रों तथा द्विज बंधुओं के लिए महाभारत नामक महान ऐतिहासिक कथा का संकलन किया। वेदों में जो फिलॉसफी दी गई उसका स्तर बहुत ऊंचा है, उस कारण से उन्होंने सोचा कि सामान्य लोग वेदों को नहीं समझ पाएंगे, इसलिए उन्होंने महाभारत जो कि इतिहास है जिसमें स्टोरी के द्वारा वैदिक सिद्धांतों को बताया गया है, तो उन्होंने महाभारत की रचना की ऐसे लोगों के लिए जो कि वेदों को नहीं समझ पाएंगे, उनके लिए इस ऐतिहासिक कथा का संकलन किया। द्विज बंधु वे हैं जो ब्राह्मणों क्षत्रियों तथा वैश्यों या आध्यात्मिक कुलों में जन्म तो लेते हैं किंतु अपने पूर्वजों के तुल्य नहीं होते, ऐसे वंशज संस्कारों के अभाव में मान्य नहीं बन पाते। इसमें वही मीनिंग दिया है, उनका जन्म ब्राह्मण कुल में होता है परंतु उनके अंदर गुण नहीं होते हैं, संस्कार के कारण उनके अंदर ऐसे गुण नहीं पाए जाते, ऐसे संस्कार बालक के जन्म लेने के पहले से ही प्रारंभ हो जाते हैं, और बीजारोपण पहला गर्भाधान संस्कार कहलाता है। जो व्यक्ति गर्भाधान संस्कार अर्थात आध्यात्मिक परिवार नियोजन कि इस प्रक्रिया से नहीं गुजरता उसे द्विज कुल में जन्मा नहीं माना जाता है, क्योंकि कलयुग में गर्भाधान प्रक्रिया कोई पालन नहीं करता है, इसलिए कलयुग में व्यक्ति को आध्यात्मिक दीक्षा प्राप्त करनी होती है। दीक्षा के द्वारा व्यक्ति का उन्नति, व्यक्ति का एलिवेशन होता है, क्योंकि गर्भाधान संस्कार कलयुग में प्रैक्टिकली कोई पालन नहीं करते हैं। गर्भाधान संस्कार के बाद भी और भी संस्कार है। गर्भाधान संस्कार के बाद अन्य कई संस्कार होते हैं, जिनमें उपनयन संस्कार एक है। यह आध्यात्मिक दीक्षा के समय उत्पन्न होता है। इस विशेष संस्कार के बाद ही कोई द्विज कहलाता है। एक जन्म गर्भाधान संस्कार के समय गिना जाता है और दूसरा जन्म आध्यात्मिक दीक्षा के समय। जो इन महत्वपूर्ण संस्कारों से गुजरता है उसे प्रामाणिक द्विज कहा जा सकता है। गर्भाधान संस्कार के बाद, गर्भाधान संस्कार से व्यक्ति के शरीर का जन्म होता है उसके बाद, और दूसरा संस्कार उसकी दीक्षा के समय होता है, जिसको उपनयन संस्कार बोलते हैं। यदि माता तथा पिता आध्यात्मिक परिवार नियोजन अर्थात गर्भाधान संस्कार का पालन किए बिना केवल वासना व संतानें उत्पन्न करते हैं तो ये संतानें द्विज बंधु कहलाती हैं। निश्चित रूप से ये द्विज बंधु नियमित द्विजों के बालकों के समान बुद्धिमान नहीं होते। ऐसे द्विज बंधुओं की गणना शूद्रों तथा स्त्रियों के साथ की जाती है, जो स्वभाव से अल्पज्ञ होते हैं। अल्पज्ञ श्रेणी के व्यक्ति यथा स्त्रियां शूद्र तथा उच्च वर्णों के अयोग्य पुत्र आवश्यक योग्यताओं से विहीन होते हैं, जिससे वे दिव्य वेदों के उद्देश्य को नहीं समझ पाते। ऐसे लोगों के लिए महाभारत लिखा गया है। महाभारत का उद्देश्य वेदों के उद्देश्य की पूर्ति है, अतः इस महाभारत में वेदों का सार भगवत गीता सन्निविष्ट है। अल्पज्ञ लोग दर्शन की अपेक्षा कथाओं में अधिक रुचि दिखाते हैं, अतएव वेदों के दर्शन का प्रवचन भगवान कृष्ण द्वारा भगवत गीता के रूप में किया गया। व्यास देव तथा भगवान कृष्ण दोनों ही दिव्य पथ पर हैं, अतएव उन्होंने इस युग के पतित आत्माओं के कल्याण के लिए सहयोग किया। भगवत गीता समस्त वैदिक ज्ञान का सार है। यह आध्यात्मिक मूल्यों का वैसा ही प्रथम ग्रंथ है जिस प्रकार उपनिषद है। वेदांत दर्शन तो अध्यात्म के स्नातकों के अध्ययन करने का विषय है। केवल स्नातकोत्तर छात्र ही आध्यात्मिक या भगवत भक्ति में प्रवेश पा सकते हैं। यह एक महान विज्ञान है और इसके परम आचार्य श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में स्वयं भगवान है। जो लोग उनके द्वारा शक्ति प्रदत्त हैं वे ही दिव्य भगवत भक्ति में अन्यों को दीक्षित कर सकते हैं। ये बहुत क्लियर तात्पर्य है कि जो लोग वेदों को नहीं समझ पाते उनके लिए वेद व्यास ने महाभारत की संस्तुति की है। इसके बाद नेक्स्ट श्लोक में आता है, एवं प्रवत्तस्य सदा भूतानां श्रेयसी द्विजाः सर्वात्मकेनापि यदा यद सर्वात्मकेनापि यदा नातुष्यद् हृदयं ततः। हे द्विज ब्राह्मणों, यद्यपि वे समस्त लोगों के समग्र कल्याण कार्य में लगे रहे तो भी उनका मन भरा नहीं। यहाँ से प्रारंभ होता है कि व्यास देव ने इतना सारा कार्य किया, वेदों को डिवाइड किया और पुराण इतिहास इन सब की रचना की, उसके बाद भी व्यास देव तुष्यति संतुष्ट नहीं थे, ना तुष्यति उनका हृदय संतुष्ट नहीं था। श्री व्यासदेव अपने आप में संतुष्ट नहीं थे, यद्यपि उन्होंने जनसामान्य के चतुर्दिक कल्याण के लिए वैदिक साहित्य तैयार किया था। ऐसी आशा थी कि वे ऐसे कार्यों से संतुष्ट होंगे, लेकिन अंततः वे संतुष्ट नहीं हुए। तो इतना सारा करने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते हैं, उसका कारण अगले श्लोक में आता है, नाति प्रसीद हृदयः सरस्वत्यास्तटे रुसुचौ वितर्कयन् विविक्तस्थ इदं चोवाच धर्मवित्। इस प्रकार मन में असंतुष्ट रहते हुए ऋषि ने तुरंत विचार करना प्रारंभ किया, क्योंकि वे धर्म के सारे के ज्ञाता और मन ही मन कहा। एक्चुअली व्यासदेव स्वयं भगवान के अवतार हैं, इसलिए जब वो संतुष्ट नहीं हुए तो उन्होंने विचार करना प्रारंभ किया, क्योंकि वो खुद धर्म को जानने वाले हैं, धर्म के सारे तत्वों को जानते हैं पूरी तरह से। इसलिए उन्होंने खुद ही विचार करना चालू किया कि इतना करने के बाद भी मैं संतुष्टि को फील क्यों नहीं कर रहा हूँ, मैं स्वयं संतुष्ट क्यों नहीं हो पा रहा। इस प्रकार से व्यासदेव ने सोचना प्रारंभ किया। इसका तात्पर्य, ऋषि अपने मन के असंतोष का कारण ढूंढने लगे। सिद्धि तब तक नहीं मिल पाती जब तक कोई हृदय से संतुष्ट ना हो। सारे कार्यों को अगर हम करें परंतु हृदय से संतुष्टि नहीं हो तो व्यक्ति संतुष्ट नहीं होता है। हृदय की तुष्टि को पदार्थ से परे ढूंढना होता है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बता रहे हैं प्रभुपाद जी कि जब व्यक्ति केवल पदार्थ के बारे में सोचता है तब तक वो संतुष्ट नहीं होता है। भौतिक वस्तुओं के बारे में सोचने से व्यक्ति संतुष्ट नहीं हो सकता है, जब तक वो आध्यात्मिक वस्तुओं के बारे में नहीं सोचे तब तक वो व्यक्ति संतुष्टि को प्राप्त नहीं करता है। नेक्स्ट श्लोक आता है 28 एंड 29, 28 29 नंबर श्लोक में, धृत प्रतेन ही मया छंदांसी गुणभोग मानिता निव्यनेकेन गृहीतं चानुशासनं भारत व्यपदेश व्यपददेशेन न्यामायार्थश्च दर्शितः दृश्यते यत्र धर्मादि स्त्रीशूद्रादिभिरप्युत। मैंने कठिन व्रतों का पालन करते हुए वेदों की, गुरु की तथा यज्ञ वेदी की मिथ्या आडंबर के बिना पूजा की है। मैंने अनुशासन का भी पालन किया है और महाभारत की व्याख्या के माध्यम से शिष्य परंपरा को अभिव्यक्ति दी है, जिससे स्त्रियां, शूद्र तथा अन्य द्विज बंधु लोग भी धर्म के मार्ग का अवलोकन कर सकते हैं। व्यासदेव इस प्रकार से मन में सोच रहे हैं कि मैंने कहाँ पे गलती की। कठिन व्रतों का मैंने पालन किया, वेदों को, गुरु को, यज्ञ वेदी की मैंने पूजा की है और सब सब प्रकार से मैंने कार्य किया जो कि वेदों को लिखने में और लोगों के कल्याण में मदद करेगा। मैंने सारा कार्य किया है, अनुशासन का भी पालन किया है, यज्ञ वेदी का भी मैंने पूजा की है, गुरु की पूजा की है, वेदों की पूजा की है और साथ साथ मैंने वेदों के साथ साथ पुराणों इतिहासों को भी लिखा है जिससे सभी तरह के लोगों को संतुष्टि मिले। परंतु तब भी मुझे संतुष्टि क्यों नहीं मिल रही है? इसका तात्पर्य भी इंपॉर्टेंट है। कठोर अनुशासनिक व्रत तथा शिष्य परंपरा का पालन किए बिना कोई भी वेदों के अर्थ को नहीं समझ सकता। अभिलाषी व्यक्ति को चाहिए कि वेदों, गुरुओं तथा याज्ञिक अग्नि की पूजा करें, वैदिक ज्ञान की इस इन समस्त बारीकियों को क्रमबद्ध रूप में महाभारत में प्रस्तुत किया गया है ताकि स्त्री वर्ग, श्रमिक वर्ग तथा ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य कुलों के अयोग्य व्यक्ति उन्हें समझ सके। इस युग में मूल वेदों की अपेक्षा महाभारत अधिक आवश्यक है। कलयुग के लोगों के लिए महाभारत, रामायण ये ग्रंथ बहुत महत्वपूर्ण है, वेदों से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कई बार, क्योंकि ये हमें व्यासदेव ने स्पेशली ऐसे लोगों के लिए लिखे हैं जो वेदों को नहीं समझ सकते हैं, जबकि उनका ज्ञान और रामायण महाभारत इन ग्रंथों में जो ज्ञान है वो भी व्यक्ति को अल्टीमेट लेवल तक पहुंचा सकता है। तो इसलिए इसमें तात्पर्य में लिख रहे हैं कि इस युग में मूल वेदों की अपेक्षा महाभारत अधिक आवश्यक है। ओके, किसी को कोई प्रश्न पूछना है यहाँ तक? नेक्स्ट वीक से हम 30 श्लोक से चालू कर सकते हैं। अगर किसी को कोई प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते हैं। यस, आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। हाँ, जिन्होंने उठाया।
हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी।
हरे कृष्ण प्रभु।
हाँ वो
गैलेक्सी
या
A50।
प्रभु जी, एक्चुअली आपने जो रामायण वाला प्रसंग बताया था ना,
हाँ
तो जिसमें वो रामचंद्र भगवान उसका वध कर देते हैं, मतलब आज्ञान देते हैं,
हाँ
तो सेम उसमें दूसरा इंसिडेंट वो भी आता है ना कि जब रामचंद्र भगवान वनवास के लिए निकलते हैं
हाँ
और उनको फर्स्ट टाइम वो गुह प्रदेश के राजा मिलते हैं,
हाँ
तो वो भी मतलब निम्न निम्न जाति में उनका जन्म हुआ होता है पर
हाँ
वो में शुद्ध भक्त होते हैं,
हाँ तो
तो
भगवान राम उनको
जैसे
गले
उनको
लगाते
गले,
हैं।
हाँ उनको गले लगाते हैं। प्रदेश के जो राजा थे वो मतलब बिल्कुल सही थे, शुद्ध भक्त थे, रामचंद्र की भक्ति
हाँ
भाव हमेशा करते थे,
हाँ
इसीलिए उनको गले से लगाया। पर हालांकि वो जो शूद्र था, मतलब जो लोग मतलब ऐसा ब्लेम करते हैं कि भाई निम्न जाति के साथ ऐसा किया ये गलत है, पर एक्चुअल में उनको ये दूसरा दृष्टांत पता नहीं होता है कि
हाँ
ऐसा नहीं होता है, मतलब इसी वजह से उन लोग को मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग होती है।
हाँ नाइस, अच्छा पॉइंट है। तो
यस
कल कल सोमवार है, कल एक स्पेशल क्लास है। कल नॉर्मली भगवत गीता क्लास होती है, भगवत गीता का सेकंड चैप्टर चल रहा है, और चूंकि जन्माष्टमी आने वाली है इसलिए कल भगवान कृष्ण के जन्म की लीला पर डिस्कस करेंगे हम। 7:15 से चालू होगा क्लास, 7:30 की बजाय 7:15 से कल क्लास स्टार्ट करेंगे और भगवान कृष्ण की जन्म की लीला को डिस्कस करेंगे कल की क्लास में। तो आप लोग बता सकते हैं और भी लोगों को बता सकते हैं। कल सामान्य भगवद गीता क्लास नहीं होगी, कृष्ण जन्म के ऊपर डिस्कस करेंगे। 7:15, 7:30 की बजाय 7:15 पर डिस्कस करेंगे। ओके हाँ
कृष्णा,
यस टू
मेरे क्वेश्चन थे प्रो, एक
हाँ बताइए।
महाराज का क्लास था, मूर्ति प्रेमचंद महाराज का, महाराज
हाँ
के क्लास में किसी ने क्वेश्चन किया था कि अपने बुक में जो पीपल का पौधा होता है अश्वत्थ, चैतन्य चरित्र, अश्वत्थ नाम का डिस्क्रिप्शन आती है, तो
हाँ
प्रभुपाद जब उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करते हैं तो अश्वत्थ
हाँ
हम हिंदी में पीपल कहते हैं,
हाँ
प्रभुपाद जब इंग्लिश ट्रांसलेशन करते तो उसमें बनाना या बनियान ऐसा कुछ लिखते हैं जो बट
बन
वृक्ष को,
हाँ बेनी एंट्री हाँ
हाँ जो बट वृक्ष को रिप्रेजेंट करता है। दोनों
हाँ हाँ
पौधे अलग है तो इसको तो कैसे समझे, क्योंकि हम मटेरियल की दृष्टि से देखते हैं तो आज लगता है कि हाँ ये गलत हो, नहीं तो नहीं, तो फिर कैसे समझे।
भगवत गीता में भी अश्वत्थ वृक्ष आता है ना, उसको एक्चुअली अश्वत्थ को प्रभुपाद जी बरगद लिखते हैं, वास्तविकता में बरगद है, क्योंकि बरगद का वृक्ष में जो शाखाएं उपशाखाएं होती हैं पीपल में उतनी नहीं पाई जाती हैं। बरगद का वृक्ष में आप देखेंगे उसकी जो डाली है, डाली में से छोटी छोटी लकड़ियां निकलती हैं, फिर वो अपने आप नीचे जमीन में चली जाती है, उससे नई जड़ बन जाती है। तो जो डिस्क्रिप्शन भगवदगीता में दिया है वो बरगद के वृक्ष का ही दिया है, तो हो सकता है संस्कृत में अश्वत्थ दोनों को बोला जाता हो, परंतु डिस्क्रिप्शन से हम समझ सकते हैं कि बरगद का पेड़ है। बरगद का पेड़ आप देखेंगे इसलिए इतना लंबे समय तक जीते हैं क्योंकि उसकी और ज्यादा जड़ें जो हैं, कोई भी डाली निकल के पास जमीन के अंदर जाती है, जमीन से टच करती है, फिर वो जड़ बन जाती है। ऐसे ऐसे बरगद का वृक्ष फैलता जाता है। बरगद में आपने देखा होगा बच्चे भी बहुत लटकते हैं उसके ऊपर, झूला झूलते हैं उसकी डालियों के ऊपर, और डालियां गिरती रहती हैं। तो जब डिस्क्रिप्शन शास्त्रों में आता है तो उसी वृक्ष का आता है, बरगद के वृक्ष का, इसलिए प्रभुपाद जी बेनी एंड ट्री को डिस्क्राइब करते हैं। हो सकता है संस्कृत में दोनों का उस तरह से डिस्क्राइब किया जाता हो, परंतु डिस्क्रिप्शन के आधार पर हम समझ सकते हैं कि भौतिक संसार बरगद के वृक्ष के समान है। ठीक है
सेकंड क्वेश्चन था एक्चुअली, क्वेश्चन
हाँ
है
हाँ
भगवत गीता का, जब हम देखते हैं तो भगवत गीता को हम मानते हैं कि भगवान का उपदेश है, हालांकि उसमें वही है, लेकिन फिर जो फर्स्ट चैप्टर हम देखते हैं उसमें पूरा युद्ध के बारे में विवरण आता है कि कैसा कौन करते हैं, संजय बता रहे हैं ये
हाँ
को, तो फिर
हाँ
अगर भगवान को निर्देश देना था मतलब जिस पर्टिकुलर वर्सेस में वो दे रहे हैं निर्देश,
हाँ
तो उतने को ही क्यों भगवत गीता नहीं माना गया, ये जो संजय ने जो कहा युद्ध के बारे में जो डिस्क्रिप्शन हुआ उसको भी इंक्लूड किया गया, इसका अलग से 700 श्लोकों का ही क्यों डिवाइड किया गया, मतलब सेकंड चैप्टर डायरेक्टली वहां ले लिया जा सकता था।
नहीं, उसका बैकग्राउंड बताने के लिए, क्योंकि कोई भी ग्रंथ अपने आप में पूर्ण होना चाहिए। जैसे ग्रंथ चालू, कोई भी चीज आप देखें, कोई लेसन चालू होता है तो उसका बैकग्राउंड होता है ना पहले, कि ये व्यक्ति इस सिटी में रहता था, उसके माता पिता ये थे, उसकी फैमिली में ये थे, तब उसकी स्टोरी चालू होती। तो सेकंड चैप्टर अगर सीधा चालू होते कि अर्जुन ने ऐसा, भगवान ने ऐसा बोलना चालू कर दिया, अर्जुन ने ऐसा, तो किसी को पता ही नहीं चलता कि उसके बैकग्राउंड क्या था। अर्जुन, क्योंकि पहले अध्याय में अर्जुन विषाद योग दिया गया ना, कि भगवदगीता बोलने के पीछे पहले पीछे क्या रीजन था, ऐसी कौन सी घटनाक्रम था जिसके कारण भगवत गीता बोली गई। अगर वो नहीं दिया जाता तो लोगों को पता नहीं चलता कि भगवत गीता बोली क्यों गई, बैकग्राउंड ही नहीं पता चलता तो उसका बेनिफिट कैसे मिलता। तो पहला अध्याय जो है वो भगवत गीता का बैकग्राउंड सेट करता है, फिर दूसरे अध्याय से भगवत गीता चालू होता है, इसलिए वो भी भगवत गीता का पार्ट है, क्योंकि भगवत गीता का मतलब है अर्जुन और भगवान का संवाद। तो अर्जुन का तो संवाद पहले अध्याय से चालू हो जाता है, इसलिए उसको भगवत गीता में इंक्लूड किया गया, संजय से, संजय ने जब से बोलना चालू किया। ठीक है
तो सेम भागवत में भी हम वही कह सकते हैं भगवत
हाँ, भागवतम में भी हम
डिस्क्रिप्शन।
वही कह सकते हैं, पहला कैंटो जो है वो उसी तरह से है, भागवत के अंदर ही आता है वो।
थैंक यू।
ओके, तो कल हम मिलते हैं 7:15 पे, ध्यान रखिएगा 7:30 का क्लास, 15 मिनट पहले होगा, 7:15 पे चालू होगा भगवान कृष्ण के जन्म की लीला के ऊपर। ओके, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद भागवत।